श्रीमद्भागवत अध्याय 4 श्लोक, इसका जो 4 अध्याय 11 श्लोक संख्या 11, सर्वभूतात्म भावना भूतावासम हरि भगवान आराध्या पतुराराध्यम विष्णुस्तुत परम पदम।
अनुवाद, वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम श्री भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित है। तात्पर्य, समस्त जीवात्माओं के भौतिक शरीर तब तक विद्यमान नहीं रह सकते जब तक उनमें आत्मा तथा परमात्मा का वास न हो। आत्मा परमात्मा के अधीन है, जो परमाणु में भी उपस्थित है। अतः प्रत्येक वस्तु के श्री भगवान पर निर्भर रहने के कारण भगवान का भूतावास, भगवान को भूतावास कहा गया है। जब मनु ने यह युद्ध बंद करने के लिए कहा तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय होने के नाते अपने पितामह मनु से तर्क कर सकते थे, किंतु उन्हें यह सूचित किया गया कि चूंकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का धाम है, अतः मंदिर तुल्य होने से किसी भी जीव की व्यर्थ हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सर्वभूतात्म भावेन भूतावासं हरि भगवान आराध्या पतुराराध्यम विष्णुस्तत् परमं पदम्। स्वयंभू मनु, ध्रुव महाराज को अनावश्यक हत्या से रोकने के लिए, हत्या करने से रोकने के लिए उपदेश दे रहे हैं, और यहाँ पर उनको पुनः स्मृति करा रहे हैं, क्योंकि हम पाप करते हैं अज्ञानता के कारण। इसलिए स्वयंभू मनु उनको वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि वो पाप करने से रुक जाएं। तो आज के श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा स्वयंभू मनु उस महत्वपूर्ण तथ्यों को इंगित कर रहे हैं। तो पहले तो वो कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज से कि आप तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपने हरि का स्थान प्राप्त कर लिया है, आप वहां जाने वाले हैं, ये निश्चित हो चुका है कि आप वहां जाने वाले हैं, और वो धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आपने प्राप्त कर लिया है, यानी कि आप हरि के कितने प्रियजन हैं। तो भगवान का स्थान प्राप्त करना, वो यहां बताया गया दुराराध्यम, बहुत मुश्किल है उसको प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना। तो ये जो माया जगत है, देवी धाम, यहां से निकलकर भगवत धाम को प्राप्त करना ये परम गति है, लेकिन बहुत दुष्कर है। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं इस परम गति के विषय में, अव्यक्तम अक्षरम इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो सभी उपनिषदों में और सभी उपनिषदों में भगवान के परम धाम का वर्णन है, भगवान के नाम का भी वर्णन है, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं है जितना कि पुराणों में है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में, जो कि अमल पुराण है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये सब तथ्य बताए गए हैं। जैसे यहां बताया गया है हरिम, तो हरि का धाम। तो जो गीतोपनिषद है तो उसमें सभी उपनिषदों का वो सार है गीतोपनिषद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो जो उपनिषदों में इंगित किया गया है कि वो भगवान वो परम सत्य है जिसका धाम ऐसा है जो ऐसा है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उपनिषदों में जो वर्णित वो सब धाम है वो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को इंगित करते हैं, और अन्य पुराणों में इसका डिटेल में विवरण है। जो उपनिषदों में केवल एक हिंट दिया गया है, क्योंकि उपनिषदों का जो ज्ञान खंड का अंग है उसके अंतर्गत केवल नकारात्मक केवल विशेष ध्यान दिया गया है कैसे भगवान भौतिक नहीं है इस चीज को समझाने के लिए। तो भगवान को समझने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है। मनमाने ढंग से भगवान को हम नहीं समझ सकते हैं, तो भगवान के धाम में भी नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान को समझना मतलब भगवान के धाम जाना, वो कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया सक्त मन पार्था योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्सुनु, कि असंशय होकर के कैसे तुम मुझे जान सकते हो, समग्रम संपूर्णता में वो सुनो। तो भगवान को संपूर्णता में जानने का अर्थ है भगवान के साथ शाश्वत नित्य संबंध में स्थापित हो जाना। ऐसा नहीं है कि भगवान को समग्र रूप में जानना मतलब एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गया है, वो समग्र रूप में जानना है ही नहीं। समग्र रूप में जानने का मतलब ही है कि जब हम जानने के बाद जो नित्य क्रिया है यानी भगवान की नित्य भक्ति सेवा है उसमें रत हो गए हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम वस्तुतः भगवान को जान चुके हैं, नहीं तो हम भगवान को वस्तुतः नहीं जाने। तो भगवान को जानना ऐसा नहीं कि हम भगवद गीता के सब श्लोक जानते हैं। तो ज्ञानम और विज्ञानम जो अगले श्लोक में बताते हैं, ज्ञानम से हम सब विज्ञानम इदम वक्षाम अशिष्टतः यद ज्ञातवान अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान को जानने का मतलब ज्ञान और विज्ञान, थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को मिला करके समझना ही भगवान को तत्वतः जानना है। और तत्वतः जानने पर ही भगवान बताते हैं कि आप जो है मेरे पास आ सकते हो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गिनः। तो ये तत्वतः भगवान को जानने के बाद ही संभव हो पाएगा भगवत धाम जाना। तो इसलिए ये एक बहुत गहन विषय है भगवान को समझना, क्योंकि भगवान को समझना मतलब जन्म मृत्यु चक्र से निकल जाना हमेशा हमेशा के। तो स्वाभाविक है कि वो सरल वस्तु नहीं है, क्योंकि चैतन्य चेतन जैसे बताया गया है कि कोटि कोटि कर्मियों के बीच में एक ज्ञानी होता है और कोटि ज्ञानी मध्य एक भक्त होता है। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्य चेतति सिद्धयता सिद्धा नाम कश्चन माम व्यति तत्वतः। तत्वतः भगवान को जानने वाले बहुत दुर्लभ है उनको जानना, सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत दुर्लभ है ऐसा महात्मा बनना, ऐसे महात्मा को के संपर्क में आना जो तत्वतः भगवान को समझा है। तो जो माया ग्रसित जीव है उसके लिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। माया मुद्दे जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, तो माया किसी जो मुग्ध जीव है उनको स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। तब कृपाए कृष्ण कैलर वेद पुराण, और उन पर कृपा करने के लिए इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये वेदों की रचना की है। तो कई लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो परम सत्य को जानते हैं, लेकिन यथार्थ में हम यथार्थ के संबंध में विवेचना करें तो साधारणतया आंशिक रूप से ही वो भगवान को जानते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्तद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शक्यते। तो परम सत्य को तीन स्तर में जान सकते हैं। तो जितने भी आरोपपंथी हैं वो भगवान को अधिक से अधिक उनके ब्रह्म ज्योति जो उनकी आंशिक अभिव्यक्ति है भगवान परम सत्य की, वहीं तक ही वो पहुंच सकते हैं। जितने भी आरोपपंथी हैं, चाहे वो वैज्ञानिक गण हो, चाहे वो वैदिक धर्म को पालन करने वाले हों लेकिन जिनका पथ आरोपपंथी ही है, यानी जो गुरु शिष्य परम शुश्रूषा पंथ के नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा के नहीं है, चाहे वो वेदों के अंतर्गत आते हों चाहे वेदों के बाहर आते हों, लेकिन उनकी पहुंच बहुत से बहुत केवल ब्रह्म ज्योति तक हो सकती है। और जो सांख्य योगी हैं, जो हठ योगी हैं, जो परमात्मा रूप पर चिंतन करते हैं, सांख्य योगी मतलब वो कपिल भगवान यहाँ परमात्मा के ऊपर ध्यान करने को बताए हैं, तो वो लोग परमात्मा तक पहुँचते हैं और परमात्मा वाद अधिकतर फिर भगवत धाम जा सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं उनके शुद्ध होकर के। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि बहुत दुर्लभ है ये भगवान के धाम को पहुंचना। और ध्रुव महाराज तुमने तो उसको प्राप्त कर लिया उस धाम को, यानी आप कितने सौभाग्यशाली हो, यानी कि आप कितने उच्च स्थिति में हो, ये उनको बोध करा रहे हैं कि आप सोचिए कि आप क्या प्राप्त कर चुके हैं। तो क्षण भर के लिए ध्रुव महाराज ये विस्मृति हो गई है, इसलिए अनावश्यक हत्या करना प्रारंभ कर दिया है। तो इसलिए उनको बोध करा रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को देखो कि आप कितने उन्नत भक्त हैं हरि के, तो फिर आप हरि का अपराध क्यों करने पर तुले हैं अभी? आप तो हरिजन हैं, आप तो हरि के भक्त हैं, तो आप क्यों अभी हरि का अपराध कर रहे हैं? ये उनको बोध करा रहे हैं। और फिर हरि के सभी जीवों को हरि के साथ उनका क्या संबंध है उसके विषय में बता रहे हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज अनेक अनेक जीवों को हत्या कर रहे हैं, अनेक अनेक शरीरों को मार रहे हैं। तो इसलिए स्वयं मनु हरि का और सभी जीवों का संबंध ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि ध्रुव महाराज को बोध हो जाए कि वो जो जीवों की हत्या कर रहे हैं कैसे वो हरि की अप्रसन्नता का कारण बनेगा। तो इससे एक और चीज हम ये भी देख सकते हैं कि जो उन्नत भक्त होते हैं या जो जिनकी चेतना बहुत विकसित होती है, वो हर शब्द उनका बहुत बहुमूल्य होता है और वो बहुत सोच समझ के ही वो हर शब्द आता है। ऐसे कबीरदास जी भी कहते हैं, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तो राज टोल कर तब मुख बहरान। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार किए होते हैं उनका एक एक शब्द आत्म साक्षात्कार से परिभूत होता है, परिपूर्ण होता है, परिपक्व होता है। तो कोई भी चीज को व्यर्थ नहीं बोलते हैं, एक भी शब्द व्यर्थ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नॉनसेंस नहीं बोलते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति मनोरथ पे है, मानसिक स्तर पे है, वो अक्सर सब बकवास करते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं, उनका कोई सेंस नहीं होता है। तो यहाँ हरि भगवान का की विशेषताएं बताई हैं जीवों के संबंध में, कि पहले तो सर्वभूत आत्मा, कि वो जो हरि है सभी जीवों के हृदय में स्थित है, सभी के परमात्मा है वो। क्षेत्रज्ञं चापि मां सर्व क्षेत्रेषु भारतम्। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि मैं सभी जीवों का आत्मा हूं। तो एक आत्मा और एक परमात्मा, तो जो सब जीवों की आत्मा है वो मैं हूं। सर्व क्षेत्रज्ञ चापि मां सर्व क्षेत्रेषु भारतम्। सभी क्षेत्रों का जो क्षेत्रज्ञ हूं, क्षेत्र मतलब शरीर, उसके पहले श्लोक में परिभाषा दी गई कि शरीर जो है वो क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसा क्षेत्रज्ञ जो सभी शरीरों को जानता है वो मैं हूं, यानी कि सर्वभूत आत्मा सभी जीवों के जो आत्मा है। साधारणतः एक आत्मा एक शरीर की होती है, हम सबकी एक आत्मा सबके अलग अलग है। मेरे जो अनुभव हैं मेरी जो वो किसी दूसरे को नहीं पता है और दूसरे के मुझे नहीं पता है, तो इसलिए सबकी आत्मा अलग अलग है। लेकिन परमात्मा एक ही समय पर वो सभी के हृदय में विद्यमान है, इसलिए वो कहा गया है सर्वभूत आत्मा। और भूतावासम सभी भूतों के, भूत मतलब आत्मा और जो भौतिक शरीर ये मिश्रण, एतद्योनिनी भूतानि, इन दोनों के मिश्रण से यानी कि आत्मा और भौतिक एलिमेंट यानी शरीर, उसको भूत टोटल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं। भूत लिविंग एंटिटीज होते हैं, जीव जीव यानी उनकी आत्मा, वो आत्मा और वो उनका शरीर, तो वो जो है उसको भूत बोलते हैं। तो भूतावास सभी इस सृष्टि के अंदर जो भी है वो भगवान बताते हैं भगवद गीता में, एतद् योनिनि भूतानि भूमेर जलवायु आकाश इत्यादि, और फिर अपरयमितस्त्वन्यम वो जो आत्मा है उसके मिश्रण से ही हर चीज बनी। और ये दोनों की दोनों चीजें यानी कि जो भौतिक प्रकृति है और जो तटस्थ शक्ति जीव है, उन दोनों के जो आवास हैं भूतावास, उनको भूतावास कहा गया है। यानी दोनों चीजें जिन पर टिकी हैं, जिन पर आश्रित हैं, वो है हरि परमाणु स्थल। तो भगवान जो परमात्मा के रूप में हर एक परमाणु के अंदर स्थित है, यानी कि स्थित है मतलब कि हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं, हर चीज उन पर आश्रित है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदाति कामान। तो भगवान के ऊपर हर चीज निर्भर है, जड़ या चित, उनके बिना किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है। समस्त जीवात्माओं के भौतिक शरीर तब तक विद्यमान नहीं रह सकते जब तक उनमें आत्मा तथा परमात्मा का वास न हो। तो यही आजकल के जो भौतिकवादी विचारधारा के जो वैज्ञानिक गण हैं उनकी भूल धारणा है कि वे सोचते हैं कि भौतिक प्रकृति स्वयं विद्यमान है, कि इस भौतिक प्रकृति को टिकाने वाले परमात्मा हैं, सुप्रीम सोल हैं, ये उनको ज्ञात नहीं। और इसी गलत फहमी के आधार पर सभी कार्य चल रहा है पूरे जगत के अंदर कि हम केवल शरीर हैं और ये शरीर अपने आप, ये प्रकृति अपने आप चलती है। लेकिन ना तो ये लॉजिकल है ये सोचना कि प्रकृति अपने आप चलती है, क्योंकि जड़ पदार्थ अपने आप से क्रियाशील नहीं हो सकते हैं। हमारे अनुभव में ऐसा कहीं है ही नहीं कि कोई भी जड़ चीजें अपने आप कुछ भी कर सके, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे माँ के गर्भ के अंदर एक शिशु का शरीर पनपता है, तो हम देखते हैं कभी कभी स्टिल बॉर्न बेबी होते हैं, यानी कि जन्म के समय पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म तक वो ठीक से विकसित हो रहा था उनका शरीर, लेकिन जन्म के समय में किसी कारण से उनकी मृत्यु आती है, तो उसको स्टिल बॉर्न कहते हैं, जन्म से उमर जाते हैं, तो फिर उनका शरीर आगे डेवलप नहीं होता है। लेकिन एक सामान्य बच्चे का शरीर आगे डेवलप होता है, पनपता है। तो वो क्या चीज है जिससे कि वो शरीर डेवलप हो रहा है एक साधारण बच्चे में और एक मरे हुए बच्चे में वो शरीर आगे विकसित नहीं हो रहा है? अभी तक विकसित हो रहा था, अभी क्यों विकसित नहीं हो रहा? तो वो क्या चीज है? तो वैज्ञानिकगण साधारण रूप से कह सकते हैं कि कुछ केमिकल्स हैं, लेकिन वो केवल उनकी मान्यता है। तो वो गहन विषय है, सूक्ष्म विषय है, इससे उनकी पहुंच नहीं है वहां तक। लेकिन वो स्वीकार करना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये वास्तविक तथ्य है कि वो नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा स्वीकार कर लेने पर कि हम नहीं जानते हैं, तो फिर हम आसानी से अन्य ऑप्शंस को स्वीकार करने, उनको स्टडी करने के लिए ओपन माइंडेड हो सकते हैं, खुले दिमाग के हो सकते हैं कि ठीक है, हम तो नहीं जानते हैं कि ये बच्चा क्यों मर गया, ये शरीर अभी क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, तो क्यों ना एक दूसरी प्रपोजिशन हाइपोथेसिस कि आत्मा जैसी चीज है, जो चेतन है, जो शरीर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसी संभावनाएं हैं, इसको ध्यान में रख करके हम वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वैज्ञानिकगण कई आंशिक स्वभाव के हैं, यानी कि उनकी इच्छा ही यही है कि भगवान की एग्जिस्टेंस को, स्थापना को नकारना है, इसलिए वो ये सरल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि निश्चित रूप से ये भौतिक तत्वों के अलग आत्मा का अस्तित्व है। तो सभी के शरीर जो है वो एक चेतन, किसी एक चेतन चीज के ऊपर आधारित है, और जैसे वो चेतन चीज निकलती है वो शरीर आगे डेवलप नहीं हो सकता है, बनप नहीं सकता है। तो जिस प्रकार से एक एक शरीर एक एक आत्मा के ऊपर निर्भर है, उसी प्रकार से ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो एक बड़ा शरीर है, इसकी भी एक आत्मा होनी चाहिए। ये लॉजिक है कि जैसे हमारे शरीर के लिए, को चलाने के लिए, को मेंटेन करने के लिए एक आत्मा चाहिए, उसी प्रकार से कॉस्मिक, ये जो पूरा बड़ा शरीर है, ये इसको भी चलाने वाला कोई ना कोई चेतन तत्व होना चाहिए, उसे परमात्मा कहते हैं। अन्यथा कैसे, ये सब सूरज, ये सब प्रकृति कैसे चल रही है? तो ये मशीन है लेकिन कैसे चल रही है? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे चल रही है। प्रकृति सामवश्य विसृजामी पुनः पुनः, तो अपनी प्रकृति में प्रविष्ट होकर मैं पुनः पुनः इसको सज्जित करता हूं। भूत ग्रामम इदम कृष्णम अवशम प्रकृतिर वशा, तो जितने भी भूत ग्रामम, सम टोटल जितना भी ये भौतिक सृष्टि का सृजन है, तो मैं उसमें प्रविष्ट होकर के, और ये भूत ग्रामम जितने भी जीव हैं, भूत हैं, वो सभी कृष्णम सभी अवशम प्रकृतिर वशा, तो ऑटोमेटिकली अवशम, अवशम मतलब ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली प्रकृति के द्वारा वो सब प्रकट होते हैं। तो ये जो प्रकृति का संचालन है, जो इसकी क्रिया विधि है, वो बहुत ऑटोमेटिक, इसलिए भगवान इसको यूज किए वर्ड को ऑटोमेटिक, अवशम ऑटोमेटिक, तो सब कुछ ऑटोमेटिक लगता है, बच्चे का जन्म होना, ये सूरज का आना, ऋतुओं का बदलना, क्योंकि इसके पीछे हम लोग कोई व्यक्ति का हाथ देख पाना सारा सरल बात नहीं है, इससे सब ऑटोमेटिक लगता है। देखिए जैसे एक साधारण अनुभव में भी है कि कोई मशीन होती है, सुपर कंप्यूटर है, कोई बहुत बड़ी मशीन है, ऑटोमेटिक है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो रिमोट कॉल देखना बड़ा मुश्किल है, उसका वास्तविक कॉल देखना मुश्किल है। जैसे कोई उदाहरण देते हैं कि जैसे लाइट ही है, तो अभी हमारे को साधारण से यही ज्ञान होता है कि पंखा चलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चलता है, एनर्जी एनर्जी चला रहे हैं। जैसे आप बटन शुरू करेंगे तो पंखा चलना शुरू हो जाए, तो इसके पीछे एक एनर्जी है, लेकिन एनर्जी के पीछे हमेशा कोई ना कोई एनर्जेटिक सोर्स होता है, एक शक्ति के पीछे हमेशा शक्तिमान होता है। तो भौतिक वैज्ञानिक साधारण रूप से केवल शक्ति को ही परम मानते हैं, भौतिक प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वो तथ्य नहीं है। शक्ति कभी भी अपने आप से कार्य नहीं करती, हर शक्ति का एक स्रोत होता है, शक्तिमान होता है, चेतन व्यक्ति होता है जो शक्ति को संचालित करता है। मैं अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन थे जगत के परिवर्तते। तो ये लॉजिक नहीं है ये सोचना कि शक्ति अपने आप काम कर रही है, ये जड़ संसार अपने आप काम कर रहा है। इसीलिए लॉजिक प्लस अथॉरिटी, रूपा जी बोलते हैं दो तरीके से हमको काम करना, लॉजिक प्लस अथॉरिटी, दोनों चीज चलानी पड़ेगी, लॉजिक भी चलाना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक से ही समझना है कि लॉजिक सब कुछ नहीं है, लॉजिक की अपनी लिमिट है। जैसे एक उदाहरण लें, महाराज जी उदाहरण देते हैं, यदि कोई व्यक्ति भारत में आता है तो देखता है कि ट्रेन चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, यातायात कुछ नियम है, तो एक स्वाभाविक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस देश का कोई ना कोई एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। ये लॉजिक से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, करेक्ट, कि सब संचार हो रहा है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो ये लॉजिक तक की लिमिट है। लेकिन वो प्रेसिडेंट क्या खाना पसंद करता है, क्या पहनना पसंद करता है, क्या ये लॉजिक से पता लगा सकते हैं? हजार साल तक भी लॉजिक चलाएंगे तो ये नहीं पता लगा सकते कि वो प्रेसिडेंट कौन सा कपड़ा पहनता है, क्या कहता है, क्यों, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उस प्रेसिडेंट को जानता है, सेक्रेटरी है या उसका संबंधी है, उससे पूछना पड़ेगा। तो ये भगवान है, ये सब चीज अपने आप नहीं चल रही है, कोई ना कोई नियंत्रक नियंत्रण करता होना ही चाहिए, ये हम लॉजिक के द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन वो नियंत्रण करता कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी नेचर क्या है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, ये सब विषय के लिए हम निर्भर करते हैं अथॉरिटी पर, जो भगवान को जानते हैं, तत्वदर्शियों पर, गुरु पर। तो इसलिए लॉजिक प्लस अथॉरिटी दोनों के मिश्रण से हम भगवान तक पहुंचते हैं। तो भूतावासम यानी हर चीज भगवान पर निर्भर है, ये भौतिक जगत की हर चीज। जैसे हम भागवतम में देखते हैं तो जब सृष्टि की रचना का वर्णन दिया गया है तो कैसे हर स्टेप में, हर चीज में, हर स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि भगवान उसके अंदर प्रविष्ट होते हैं, या तो ईक्षतः अपने दृष्टिपात से जीवों को गर्वित करते हैं। एक एक स्टेप पर हम देखते हैं कि भगवान के इन्वॉल्वमेंट से ही हर चीज डेवलप होती, नहीं तो एज इट इज पड़ी रही। जैसे एरोड्रम पे कोई विमान है, यदि पायलट नहीं है तो वो विमान यदि सक्षम है, उसके अंदर पेट्रोल भी है, सब कलपुर्जे भी उसके ठीक है, लेकिन जब तक पायलट नहीं है तब तक वो एक इंच भी नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि की संरचना ही भागवतम में इसको बताया है, कैसे हर स्टेप पर एक भगवान के द्वारा, भगवान की डिजाइनर डिजाइनर थ्योरी, उनके द्वारा कैसे हर क्षण संचालित हो रही है, प्रेरित किया जा रहा है हर चीज को। तो इसीलिए भगवान का नाम है यहां पर भूतावासम, हर चीज का अल्टीमेट अबोर्ड, एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन मी। भगवान बताते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी अनुभूतानी ना चांतेश अवस्थिता, कि मैं हर चीज में व्याप्त हूं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं अपनी अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त रूप में हर चीज में व्याप्त हूं। अंडांत स्थ परमाणु स्थ, हर कण कण में भगवान जो व्याप्त हैं, तो अव्यक्त रूप में व्याप्त हैं। तो ये अव्यक्त रूप क्या है, दो है। एक तो क्योंकि हर चीज भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न है, इसलिए हर चीज, जैसे ये भूमि अपनल वायु खम मनोबुद्धि एवच, भिन्न, ये भिन्न प्रकृति भगवान बताए हैं, तो इसलिए एक तरीके से वो चीज भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, तो वो भगवान का अव्यक्त रूप है, शक्ति है, अव्यक्त रूप, क्योंकि भगवान की शक्ति तो वो उनका अव्यक्त रूप है। तो इस प्रकार से भगवान सब जगह व्याप्त है। और दूसरा, परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त है, वो उनका पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है। तो एक तो शक्ति के रूप में व्याप्त है हर जगह, और दूसरा अपने व्यक्तिगत प्रतिनिधि परमात्मा के रूप में हर जगह व्याप्त है। इन दो प्रकार से भगवान कह रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थाने सर्वभूतानि न चम तेषु अवस्थिता। तो सब चीज मुझ पे आश्रित है, लेकिन मैं उन पे आश्रित नहीं हूं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। सब चीज मुझ में स्थित है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। न च मत स्थानी भूतानी, फिर इससे अगले श्लोक में बोलते हैं न च मत स्थानी भूतानी, लेकिन सब कुछ मेरे पे आश्रित नहीं। पहले बोलते हैं मत स्थानी सर्वभूतानी, सब कुछ मुझ पे, लेकिन सब कुछ मुझ पे आश्रित नहीं है। पश्चिम में योग ऐश्वर्य, ये मेरा योग ऐश्वर्य को देखो कि सब चीज मेरे पर इस तरह से आश्रित नहीं है, डायरेक्टली आश्रित नहीं है, डायरेक्टली मैं वो वहन नहीं कर रहा हूं सब चीजों को, मैं डिटेल हर एक चीज की स्वयं उसपे उसको चला नहीं रहा हूं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरा इस भौतिक जगत की सृष्टि में, रिमोटली। भूत ब्रह्म च भूतस्तो मम आत्मा भूत भावना, क्यों? क्योंकि मैं भूत ब्रह्म मेंटेनर हूं, सभी को मेंटेन करता हूं। तो जो मेंटेन करता है सबको वो उन सब चीजों में नहीं होता है, उन सब चीजों में नहीं होने का मतलब उन सबके नियमों में बाध्य नहीं होता है। तो ऐसा मत समझो कि मैं सबको धारण किए हूं इसलिए मैं उसी का एक अंश हो गया हूं, मैं भी उनके नियमों से बाध्य हो गया हूं, यह अर्थ नहीं है इसका। एक और श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो तीनों गुण हैं ये मेरे द्वारा अभिभूत हैं, लेकिन मैं इन तीनों गुणों में नहीं हूं। तो इसको क्लियर कर रहे हैं कि मैं धारण कर रहा हूं। साधारण रूप से कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज को मेंटेन करता है तो स्वयं उससे प्रभावित हो जाता है, लेकिन भगवान कह रहे मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। उदासीन मत आसीनम न च तेषु अवस्थितः, तो मैं उदासीन रूप में हूं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं। तो भगवान अपने पुरुष अवतार के द्वारा इस जगत का संचालन भरण पोषण कर रहे हैं, स्वयं नहीं। तो भूत ब्रह्म न च भूतस्तो मम आत्मा भूत भावना, तो मैं तो सभी का उद्गम हूं, तो इसलिए मैं कैसे उनमें से एक हो सकता हूं? मैं उनमें से एक नहीं हूं, मैं उनसे अलग हूं। तो ये जो मायावादी सिद्धांत है कि भगवान एको भविष्यम्, कि भगवान अनेक में विभाजित हो गए और इसलिए उनका स्वयं का अस्तित्व खत्म हो गया, ये सही नहीं। तो भगवान पूर्णमदा, भगवान पूर्ण है और उनसे अनेक अनेक पूर्ण चीज निकलती हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्णमेव विशिष्यते, फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूतावासम है, भगवान हर चीज के आवास है, रेजिडेंट है, हर चीज का आश्रित है। तो ऐसे हरि को तुमने प्राप्त कर लिया है, तो फिर तुम क्यों इन सब यक्षों को अनावश्यक मान रहे हो? क्योंकि ये सब यक्ष के शरीरों में तो वही हरि का वास है जिनको तुमने प्राप्त किया है, जो तुम्हारे आराध्य देव हैं, जो दुराराध्यम है लेकिन तुमने आराध्य करके जिनको प्राप्त कर लिया है, वही हरि तो इन सब के अंदर विद्यमान है, तो तुम क्यों इनको मार रहे हो? तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो कई श्लोकों में इस बात पर जोर दिया जा रहा है, हिंसा और अनावश्यक हिंसा, इसमें भेद समझना बहुत जरूरी है। तो अक्सर प्रभुपाल जी जब क्रिश्चियन लोगों से बात करते थे तो ये प्रश्न आता ही था। तो क्रिश्चियन मॉन्क्स तो बात करते थे कि एक बार एक पादरी आए, तो वो प्रभुपाल जी उनसे डिस्कशन शुरू किए, तो डिस्कशन शुरू होते ही दाओ शैल नॉट किल, जीसस का इसमें बाइबल में कहा है कि हत्या नहीं करनी चाहिए, तो आप क्यों स्लॉटर हाउस, क्यों कतल खाने आप लोग मेंटेन कर रहे हैं फ्रांस में? तो साधारणतः वो तर्क देते हैं, अनेक अनेक तर्क देते हैं। पहले तो कहते हैं कि एक तो तर्क है कि जानवरों में जीव नहीं होता है, तो वो कैसे कह सकते हैं जानवर में जीव नहीं होता है कि कुत्ता बिल्ली शेर तो और आदमी? तो एक दृष्टि से भी मानते हैं मैन इज एन एनिमल, सोशल एनिमल, आदमी को जानवर ही मानते हैं। तो अगर आदमी जानवर है तो जानवर भी आदमी की तरह है, यानी कि उसके अंदर भी आत्मा है, जब आदमी के अंदर आत्मा है तो वो भी एनिमल की तरह ही है आदमी भी, क्योंकि वो सब कार्य वैसे होते हैं। एक जानवर भी जनन प्रजनन करता है और संरक्षण करता है अपने बच्चों का, उनसे प्रेम भाव भी होता है, यहाँ तक कि शेर को भी अपने बच्चों से लगाव होता है सबको, तो कैसे हम कह सकते हैं। तो वो तक तो देखा नहीं। फिर वो कहते हैं कि तो पौधों के अंदर भी तो जीवन है। अगर आप कह रहे हैं कि जानवरों के अंदर जीवन है और हत्या नहीं करनी चाहिए, तो पौधों के अंदर भी तो जीवन है। तो प्रभुपाद जी इस तरह को काटते हैं, अच्छा तो पौधे के अंदर भी जीवन है और जानवर के अंदर भी जीवन है, आदमी के अंदर भी जीवन है, इसलिए हमें किसी को नहीं मानना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर जब आदमी के अंदर जीवन, जब पशु के अंदर जीवन है, तो जब हम पौधों को मार सकते हैं, तो फिर एक छोटे बच्चे को क्यों नहीं मार सकते हैं? यदि क्योंकि पौधों के अंदर भी जीवन है, जानवर के अंदर भी जीवन है, इसलिए हम वो समान ही है बिल्कुल, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए चाहे पौधे को मारो चाहे जानवर को मारो, एक ही बात है। तो फिर और एक स्टेप जाओ, तो फिर चाहे बच्चे को मारो, वो भी एक ही बात, वो भी क्या लगे? तो फिर क्यों नहीं आपको मांस खाना है ना, तो फिर क्यों नहीं बच्चे का मांस खाओ, आदमी का मांस खाओ, क्यों जानवर का मांस खा रहे हो? फिर एक और तर्क है, वो पर्टिकुलर पादरी ये तर्क दिया, हिंसा, आप बोलते हैं हिंसा, लेकिन भगवद्गीता में तो भगवान ने, आपके भगवान ने खुद बोला हिंसा करने के लिए, अर्जुन ने खुद हिंसा किया, तो आप हमको क्यों बोल रहे हैं कि हिंसा मत करो? तो यहां पर विचार आता है कि हिंसा सही मात्रा में सही उद्देश्य के लिए क्या है और गलत उद्देश्य के लिए क्या है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप अर्जुन के ऊपर मत जाओ, आप पहले ये बात तो बताओ कि thou shall not kill, पहले आपको जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि ऐसा मत करो, तो आप वो क्यों कर रहे थे? अर्जुन ने क्यों हिंसा की वो बात बाद में देखेंगे, आप क्यों हिंसा कर रहे थे, आपको मना क्या करे? तो जनरली लॉजिक देने में लोग छटकते हैं, एक बात का जवाब नहीं मिलता है तो उल्टा दूसरे प्रश्न डाल करके अपने जवाब से बचना चाहते हैं, दूसरे प्रश्न को। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट है, उसको पहले आगे नहीं जाएंगे, पहले इसको तुम जवाब दो, मैं उसका जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम इसका जवाब दो कि तुम हिंसा क्यों कर, तुमको तो जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि हिंसा नहीं करना, तो अर्जुन ने क्यों हिंसा किया? तो हिंसा करना आवश्यक है वो हम भी जानते हैं, कोई भी सरकार के कोई भी देश के अंदर पुलिस होती है वो जरूरी है, तो हिंसा जरूरी है लेकिन अनावश्यक नहीं होनी चाहिए। तो तुम जो ये कतल खाने खोल रहे हो ये अनावश्यक, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये जीवा के वेग के लिए, इसलिए ये गलत है। जीवो जीवस्य जीवन, वो तो हम भी जानते हैं कि हिंसा करना जरूरी है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। तो जब बोलते थे वो लोग कि जी पौधों में भी जीवन है, आप भी हिंसा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हम तो हिंसा करते ही नहीं, हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, पौधों को मार के भी हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे? क्योंकि हम तो ये सब को भगवान को भोग लगाते हैं और उसका जितना पाप कर रहे हैं वो सब भगवान ले लेते हैं, हमारे को कुछ नहीं आता, इसलिए हम हिंसा करेंगे नहीं। भगवान बोलते हैं हमको पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे प्रेम भाव से इसको अर्पित करता है मैं उसको सेवा करता हूं, हमें क्या चिंता की जरूरत है? भगवान बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए हम करते हैं, हमें कोई हिंसा का भाग नहीं लगता है। और दूसरी बात भी, तो पौधों को हिंसा बहुत कम होती है वैसे भी, क्योंकि फल है क्या दिया है, तो बीज है, तो बीज आगे पनपता है, उसका हिंसा वैसे भी बहुत कम होती है, और थोड़ी बहुत जो भी हिंसा होती है तो भगवान कम भोग लगाते हैं। तो भगवान चाहते हैं ये पत्र पुष्प देना, इसलिए हम देते हैं, भगवान बोलते हैं हम मीट दो, हम मीट भी देते, कोई बॉम्ब नहीं था, तब फिर वो हिंसा नहीं कराती, पर भगवान नहीं मांगे इसलिए नहीं करते। तो फिर वो लोग तर्क देते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने भी मछली खाए, जीसस क्राइस्ट भी फिश खाए। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं तो जीसस क्राइस्ट कभी कभार कोई क्षण में किसी परिस्थिति में एक मछली खा लिए, तो इसका मतलब यह है कि तुम हर दिन मीट खाओगे, बड़े बड़े कतल खाने खोल करके, ये कौन सा तर्क है? तो ये भी तर्क है कि अगर ऐसी कोई स्थिति है जहां पर आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको ऐसी विषम परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो ठीक है, आप जानवर को मार के भी खा सकते हो, पाप नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है जहां आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जैसे एक जगह एयरप्लेन क्रैश हुआ तो पहाड़ के ऊपर लोग फंस गए, तो उन लोगों ने क्या किया, तो वो डेड बॉडी थी उनका मांस खाया। प्रभुपाद जी बोलते कोई बात नहीं, कुछ नहीं खाने के लिए डेड बॉडी खाओ, कुछ नहीं है वहां, आइस है सब जगह, पेड़ पौधे नहीं है, सब बर्फ है, तो कैसे जीवित रहेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे कहीं प्रभुपाद जी बोलते अंटार्कटिका में कहीं ऐसी जगह पे आप हो, मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आ जाके वहां घर बनाए, वहां क्यों घर बना रहे जाकर, जहां खाने के लिए चीजें वहां जाके घर बनाओ, वहां रहो। लेकिन कभी ऐसा कुछ है कि आप ऐसी स्थिति में है जहां कुछ खाने को नहीं है, तो जानवर को मारे खा सकते हैं अलाउ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जबरदस्ती शॉर्ट रॉबर्स बनाओ। और दूसरी बात, यदि जीसस क्राइस्ट ने मछली खाया तो वो तो भगवान के अवतार हैं, वो तो भगवान के पुत्र हैं, वो तो पूरा जगत भी खा सकते हैं, उससे क्या तुम खा, तुम उसकी क्षमता क्यों कर पाए। जैसे शिव जी हैं, तो शिवजी तो पूरा जहर पी सकते हैं, तो तुम तो उनकी नकल नहीं कर सकते। दूसरा तक कि जीसस क्राइस्ट ने मछली खाया तो तुम भी मछली खाओ, जीसस क्राइस्ट ने जो कहा वो सुनो, जीसस क्राइस्ट ने जो करा तो उसकी नकल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो पूरा संसार भी खा सकते हैं, तुम खा सकते हो, तो तुम नकल मत करो, तुम जो उन्होंने कहा वो करो। उन्होंने कहा क्या, हिम्मत मारो ये करो, तुम क्यों मारो। तो इस तरीके से तो जो सही हिंसा है और जो स्पष्ट है, यदि कोई भी सिंसियर होगा क्रिश्चियन, तो वो इसका अप्रिशिएट करेगा कि हम अपनी जीवा संतुष्टि के लिए ये सब बहाने बना करके कि बाइबल में ऐसा कहा है, जीवन कैसे ऐसा किया है, अल्टीमेट रीजन तो क्या है, अपनी जीवा को कि भोग के लिए हम कर रहे हैं। तो उसमें वो क्या कर देते हैं कि ये संसार भगवान ने हमारे भोग के लिए बनाया, ये संसार भगवान ने भोग के लिए बनाया, तो ठीक है। तो भोग कहां कर सकते हो आप, भोग के लिए बनाया कहां, भोग के लिए बनाया भोग कैसे कर सकते हो आप, मरना पड़ेगा कहां, भोग के लिए बनाया, आप तो नहीं चाहते मरना, मरना पड़ेगा तो क्या कहां, भोग के लिए बनाया, इसका भोग के लिए नहीं बनाया, कहां भोग रहे हो आप, कौन एंजॉय कर रहा है, कोई एंजॉय नहीं कर सकता, बूढ़ा होना पड़ेगा मरना पड़ेगा, कहां भोग के लिए, भोग के लिए नहीं बनाया। तो एक्चुअली जीसस क्राइस्ट ने बहुत सही टीचिंग दिया, जीसस क्राइस्ट ने बोला गॉड दाई आर्ट इन हेवन हेलोड बी दाई नेम, तो जो वो भगवान जो स्वर्ग में वास करते हैं उनके नाम का उच्चारण किया जाए, जीसस क्राइस्ट ने ऐसा बोला, हेलोड बी दाई नेम, उनके नाम का उच्चारण किया जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उन्होंने बोला कि वो भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, उन्होंने नाम नहीं दिया क्योंकि नाम ऑलरेडी था कृष्ण, इसे नाम देने की जरूरत नहीं थी, हेलोड बी दाई नेम, उनका नाम लिया जाए, नाम ऑलरेडी है तो नाम बताने की जरूरत क्या है, नाम ऑलरेडी है कृष्ण, तो तुम नहीं जानते हो क्या नाम है, तो जानो ये कृष्ण। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने आपको बताया हेलोड बी दाई नेम, उनका नाम लेना चाहिए, तो उनका नाम लो, हरे कृष्ण मंत्र करो और उससे पहले मांस भक्षण बंद करो। तो ये जो तो बहाना बना करके हिंसा करना तो वो गलत है। तो यहां पर ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि अत्यधिक हिंसा मत करो, वो गलत है तुम्हारे, ठीक है तुमने यक्ष को मारा और बदला वो गलत उसने काम किया, तुम राजा थे तुम्हारा कर्तव्य था वो ठीक है, लेकिन अभी तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो इसीलिए भक्ति सेवा में भी हमेशा जैसे क्रोध है तो क्रोध भी आवश्यक है, लेकिन अगर हम परिपक्व नहीं है तो क्या होगा कि लिमिट क्रॉस कर जाएंगे, अपना वेग उसके अंदर मिश्रित हो जाएगा, इसलिए हर क्षण बहुत ध्यानपूर्वक चलने की आवश्यकता है कितना क्रोध। तो यदि केंद्र हमारा भगवान को प्रसन्न करना रहेगा तो हम अपने लिमिट्स को जानेंगे, जहां पर भी भगवान की सेवा की लिमिट को लान करके अपनी नित्यति में आ जाएंगे वहीं पर वो लिमिट, वहीं पर ब्रेक लगाना चाहिए। तो यहां पर अभी ध्रुव महाराज वो ये ब्रेक नहीं लगा पा रहे, वो क्रॉस कर रहे हैं लिमिट को, इसलिए आगे संगु मनु कह रहे हैं अभी स्टॉप करो, बहुत हो गया, जितना जल्दी था उतना हो गया, अभी अनावश्यक हो रहा है, अभी पाप हो रहा है, अभी रुको। तो ये यहाँ पर हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
प्रभुपाद कन्वर्सेशन में मैंने सुना था कि कोई एक साथ वर्क दे रहे थे माता जी, कृष्ण माता जी की, भगवान का नाम है आई एम, वो बोल रहे थे कि बाइबल में लिखा है भगवान ने कहा आई एम जट आई एम, भगवान का नाम आई एम है और आई एम का उच्चारण करना है
आई एम, मैं हूँ
आई एम
आई एम। भगवान मैं हूँ
आई एम, उनका नाम आई एम है।
नो आई एम इज व्हाट आई एम इज इंग्लिश वर्ड आई एम मैं हूँ। तो भी मैं बोलूँ भगवान मैं हूँ तो यस भगवान मैं हूँ, तो नाम क्या है फिर वो आगे प्रश्न है। मैं भगवान हूँ ठीक है लेकिन उनका नाम वो क्या करते हैं वो सब आगे डिटेल है। तो ये तो कोई
भगवान परमात्मा के रूप में
सब जगह है
तो आत्मा के अंदर परमात्मा होता है।
नहीं नहीं आत्मा के अंदर नहीं, आत्मा के साथ परमात्मा रहता है। आत्मा की आत्मा है मतलब जैसे आप बोलो तुम मुझे इतने प्रिय हो कि तुम मेरी आत्मा हो, बहुत प्रिय है उसको बोलो ये मेरी आत्मा है मेरे प्राण है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही हो गए दोनों, वो प्राण है मेरे को इतने घनिष्ठ है वो मेरे प्राण है। यू आर माई हार्ट, अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वो हार्ट तुम जो है वो हार्ट हो गए, यू आर माई हार्ट मीन्स आप मेरे को बहुत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं साधु नाम हृदय मह्यम, साधुओं का जो हृदय है वो मैं हूं। तो इस तरह से उसको समझना है। हाँ शक्तिमान का रिप्रेजेंटेशन विस्तार आपका साक्षात्कार हो गया वो ठीक है। जब तक इस anyway, जो महान भक्तों के जीवन के अंदर जो कुछ कार्य होते हैं तो वो कई बार हमको समझाने के लिए भी होते हैं। जैसे अर्जुन है तो अर्जुन हमेशा से आत्म साक्षात्कार की स्थिति में ही है और भगवान की इच्छा से वो कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति में आप हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी स्थिति होती है। तो इस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं उनके लिए भगवान की इच्छा अनुसार वो ऐसा करते हैं जिससे कि साधारण जन साधारण के सामने उदाहरण उपस्थित कर सके। दो तीन महीने के बाद उसका हृदय हृदय धड़कना शुरू होता है और उनके लिए चेतना को पता लगा पाना उनके लिए वही एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो चेतना को पता लगा सकते हैं। तो चेतना शास्त्रों के अनुसार चेतना की वजह से ही तो अभी तक डेवलप हो रहा है, तीन महीने में आया कैसे तो वो उनको नहीं पता है। तो कि हृदय धड़कने से ही चेतना आती है ये क्या सही है कि हृदय धड़कने से ही चेतना आती है। तो तुम चेतना को उस स्तर पर समझो जब हृदय की धड़कन शुरू होती है तो वो तुम्हारी समझ की प्रॉब्लम है। करेक्ट, जैसे बाह्य रूप में और व्यक्ति आएगा तो जब वो बोलेगा कोई साधारण आदमी है अगर कोई बोल नहीं रहा तो सोचेगा मर गया। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर जानता है कि अगर बोल नहीं रहा है सुन नहीं रहा है लेकिन यदि उसकी सांस चल रही है यदि हृदय की धड़कन सुनाई भी नहीं दे रही है लेकिन स्टेथोस्कोप से सुनाई दे रही है बहुत माइन्यूटली तो भी प्राण है तो सूक्ष्म हो गया वो तो साधारण रूप से नहीं दिखा लेकिन सूक्ष्म है। तो ऐसे ही प्राण जीव सूक्ष्म है तब तक वो तब से है लेकिन तुम्हारे को जो उसकी अभिव्यक्ति पता लग रही है बाद में पता लग रही है क्योंकि तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है समझने के इसलिए। लेकिन तर्क यह है कि अगर उसके अंदर जीवन नहीं था तो अभी तक कैसे डेवलप हुआ और यदि अभी तक डेवलप हुआ बिना चेतना के तो आगे बिना चेतना क्यों डेवलप नहीं होता रहा हो सकता। ईशु ही, ईशु भगवान के विशेष पुत्र है, महाभागवत पुत्र तो सभी हैं, वो महाभागवत विशेष, महाभागवत विशेष भगवान के महान भक्त। हैं उनका जो शास्त्र है, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट के द्वारा दिया गया है और वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो पौरुष है। लेकिन उसको जो उसको चेंज जो किया गया है, फिर वो पुरुष, वो पुरुष के द्वारा चेंज किया गया है, और जीसस क्राइस्ट ने जो बोला तो वो भगवान की वाणी है। किसमें नहीं, उसमें ज्यादा वो इतना, वो उस समय के लिए उतना उस सिस्टमेटिक आगे नहीं बढ़ा, परंपरा इत्यादि का वो लोग की इतनी प्रगतिशील नहीं, इतने प्रगत नहीं थे कि वो गुरु शिष्य परंपरा इत्यादि को ले सके। वो जीसस क्राइस्ट को चढ़ा दिए सूली पर, तो फिर आगे परंपरा मानव, तो वर्तमान में जो है वो सब मानव रचित है। मानव रचित नहीं, जीसस क्राइस्ट भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं? तो प्रतिनिधि का मतलब क्या है? प्रतिनिधि का मतलब जो भगवान का है वो कोई बात क्या है? बात इसमें तुलना की तो है ही नहीं। जो उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब आप कह रहे हैं मानव रचित, मतलब कि तीनों गुणों से प्रभावित होकर जो भगवान की जो सत्य नहीं है, असत्य वचन है कि सत्य वचन है, अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है ना। मानव प्रति जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? यदि कोई मानव भगवान की वाणी को सुन करके बोल रहा है तो वो व्यक्ति मानव है, लेकिन जो उसकी वाणी है वो मानवीय वाणी नहीं कही जा सकती ना। जो संदेश वो दे रहा है वो भगवान से आने वाला संदेश है। तो यदि वो उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं तो जीसस क्राइस्ट ने जो यथारूप में कहा वो कैसे मानवीय संरचना हो सकती है? तो जो वर्तमान जो बाइबल है, जो लोग उसको जिस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो मानवीय विचारों से कलुषित है। बाइबल दो के हजार बाइबल है, बाइबल के कितने संस्करण बदलते रहते आते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर गुरुशिष्य परंपरा का तरीका नहीं है। सब लोग आकर के उसको कमेंट लिखकर उसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं, इस प्रकार से सब होता है। कुरान, कुरान के विषय में वो भी इस प्रकार से एक बहुत साधारण सब उपधर्म और निम्न स्तर का उसमें बताया गया। चैतन्य महाप्रभु ने कुरान से ही शुद्ध भक्ति को स्थापित किया, तो वास्तविकता तो ये है, पर लोग उसको नहीं समझ पा रहे। दूसरी जैसे वेदों शास्त्रों में भी लोग उसमें भी नास्तिकवाद को लगाते हैं, उससे भी निराकारवाद को समझाते हैं, तो उनकी समझने की भूल है। पर वास्तव में जो ये शास्त्र हैं, ये जो भी हैं, वो सही लाइन की तरफ है, उनके अंदर परम ज्ञान का स्तर नहीं है, वो दूसरी बात। और यदि उनको यथारूप में जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत, उन्होंने दिया जो ज्ञान, वो गलत नहीं है, वो आंशिक सत्य है, सही डायरेक्शन में है, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो विवेक, जो गलत उसका वो प्रेजेंटेशन है, वो फिर मानवीय हो जाता है। ये मेरी समझ है। हम विशेष रूप से जो जीसस क्राइस्ट ने जो कहा उसको प्रभुपाद जी बोनाफाइड बोलते हैं।
बाइबल में जीसस क्राइस्ट का कथन नहीं बोला है,
उसके बारे में ज्यादा मेरे को डिटेल में नहीं पता, और किस किस के कथन में क्या क्या है, तो मैं उससे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। या उससे नहीं, उसमें भी जीसस क्राइस्ट ने भी, जो उससे पहले के भी थे उसमें भी जीसस क्राइस्ट ने कमेंट लिखा ना, मोसेस वाले, उन्होंने ऐसा कहा, हमको ऐसा बोला है, ये ऐसा बोला है, तो जो उन्होंने प्रमाणित किया वो सत्य है। अभी ज्यादा डिटेल में मेरे को जानकारी नहीं है बाइबल के अंदर क्या क्या सेक्शन है, क्या उसके लिए आपको किसी जानकार से पूछना पड़ेगा। ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट,
तो क्या है, इन लोगों ने सबने बताया भगवान ये है, ऐसा है, ऐसा होगा, इसीलिए उसी तरह वो जब उसमें फ्रेंड होते हैं तो उसको ऐसा लिख के बोला कि भगवान ऐसा है, ये बोला, इसी तरह पूरा भाई को लिखा गया,
भगवान के स्वयं के वचन नहीं, रिकॉर्डेड मैसेज, रिकॉर्डेड।